السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف حالك سب لوگ؟ ہم کوئک سا ریویو کر لیتے ہیں اپنا جو ہمارا پچھلی کلاس کا لیکچر تھا. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. کوئک سا ریویو کریں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے ہوم ورک پہ جائیں گے. امید ہے آپ سب لوگوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا. لاسٹ کلاس کو جیسے ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں ہم نے سب سے پہلے حروف الہجاء کو دیکھا تھا کہ اس کی تعداد میں تھوڑا سا اختلاف ہے, 28 اور 29 کہا جاتا ہے. تو اس میں پھر اختلاف اصل میں الف اور حمزہ کے ڈفرنس کی وجہ سے ہے کہ کچھ لوگ اس کو ایک ہی لیٹر کنسیڈر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو دو لیٹرز کنسیڈر کرتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ الف اور حمزہ کے اندر کیا ڈفرنس ہے, کہ اگر کوئی بھی حرکہ آ جائے تو اس کو ہم حمزہ کنسیڈر کرتے ہیں, اور اگر حرکہ کے بغیر ہمیں صرف الف نظر آئے تو ہم اس کو الف کنسیڈر کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جیسے فتحہ کسرہ ضمہ حرکات ہیں, اسی طرح جب ہم ان کو ڈبل کر دیتے ہیں تو وہ تنوین کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم ان حروف اور حرکات کو ملائیں تو پھر ہمارے پاس کلمہ کی شکل آتی ہے. اور کلمہ میں ہم نے دو بنیادی اقسام دیکھی تھی اس کی, کہ بامانی اور بےمانی ہوتی ہیں. تو جس میں سے ہم نے بےمانی کو کٹ آف کر دیا تھا کہ بےمانی ہم بالکل نہیں ریڈ کریں گے, ہم صرف جو چیز اسٹڈی کریں گے وہ بامانی کلمات ہوں گے. پھر ہم نے اس کی کلمہ کی جو بامانی کلمات ہیں ان کی ہم نے دیکھا تھا کہ بیسکلی اس کو ہم تین اقسام میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو وہ کون کون سی اقسام ہیں جس میں ہم کلمہ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اسم, فعل, حرف, ویری گڈ. اور پھر ہم نے ان کی ایک ڈیفینیشنز دیکھی تھی کہ اسم نام کو کہا جاتا ہے, کسی بھی انسان کا نام ہو جائے یا کسی ملک شہر کا نام یا کوئی صفحہ ہو. اور پھر اسی طریقے سے ہم نے فیل کو ڈیفائن کیا تھا کہ فیل کی ڈیفینیشن کوئی لکھے. فیل کیا تھا؟ یس, ایگزیکٹلی. اس میں ہاں جی, یہ جو کام ہے, جیسے آپ صرف ایکشن کو اگر لیں گے تو وہ ہمارا اسم میں چلا جائے گا. تو کام پلس زمانہ یہ فیل کے اندر آئے گا. اور اگر وہ صرف کام ہے یعنی نام ہے تو پھر وہ مصدر ہو جائے گا, یعنی کسی کام کا نام مصدر ہو جائے گا, وہ اسم کے اندر چلا جائے گا. تو فیل میں آپ نے یہ چیز بالکل نہیں بھولنی کہ کام کے ساتھ زمانہ. ایگزیکٹلی سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ کام کے ساتھ زمانہ ہونا بہت ضروری ہے. اور حروف کو ہم نے دیکھا تھا کہ حروف وہ حروف کی کیٹیگری میں وہ ہمارے پاس حروف آتے ہیں کہ جو اکیلا اپنا میننگ کلیئر نہیں کر سکتے, جب تک کسی بھی جملے میں ہم ان کو فٹ کریں تو پھر وہ اپنا مطلب واضح کرتے ہیں. جیسے مے کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں حروف کے لیے. اور پھر ہم نے اسم کو دیکھا تھا کہ جب ہم کسی بھی اسم کو اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں یا اپنے سینٹینس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بیسکلی اس کی چار چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا وسعت کے اعتبار سے. تو اسم کو وسعت کے اعتبار سے کن کن چیزوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ نکرہ اور معرفہ, ویری گڈ. پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا تھا جنس کے اعتبار سے. صحیح, جنس کے اعتبار سے ہم کون کون سی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں؟ مذکر مونس, ویری گڈ. پھر عدد کا اعتبار ہم نے تھرڈ ون دیکھا تھا. تو عدد میں ہم واحد جمع, عدد میں ہمارے پاس تین ہوتے ہیں, واحد, تثنیہ, جمع. صحیح, ٹھیک ہے. پھر ہم نے چوتھے نمبر پہ دیکھا تھا کہ اعراب یعنی جو سٹیٹس ہے وہ بھی اسم کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اسی کے اوپر ہم نے اینڈ کیا تھا کہ جو اعراب ہے اس کو آج ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. لیکن اعراب کو شروع کرنے سے پہلے جو ہمارا ہوم ورک تھا ہم اس کو کھول لیں. قرآن مجید آپ لوگ کھول لیں اپنے, سورۃ البقرہ کی, البقرہ کی سٹارٹ کی 5 آیات تھی ہمارا لیسن. ٹھیک ہے, سب اپنے قرآن مجید کھول لیں. اس میں ہمارے پاس ذالک الکتاب, الکتاب میں جو پہلا ہے لام سے جو بفور الف ہے وہ کیا ہے, اصلی ہے یا وصلی ہے؟ وصل, ایگزیکٹلی. پھر الکتاب, الکتابوں میں جو الف آ رہا ہے یعنی تھا کے بعد جو الف ہے وہ کیا ہے؟ آ, जो स्टार्ट वाला है वो वसली है, लेकिन बाद वाला असली नहीं है, इसलिए क्योंकि बाद वाला हमारा अलिफ है। हमने इस चीज को डिफाइन किया था कि जब हमारे पास किसी भी हरका के बगैर आएगा एग्जैक्टली अलिफ मद्दिया, राइट, तो किताब में था के बाद आ रहा है वो हमारे पास हमजा नहीं है, वो अलिफ है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम अगर ला में देखें तो ला वाला भी अलिफ मद है। फिर हुदल लिल मुत्तकीन अल्लदीना, अल्लदीना में जो अलिफ लाम से बिफोर अलिफ है वो वसल, ठीक है। यूमिनून बिलगैबी व युकीमून अस्सलाता, अस्सलाता में जो लाम से बिफोर अलिफ है, राइट, वसल। व मिम्मा, व मिम्मा में मीम के बाद वाला जो अलिफ है वो क्या है, मिम्मा में अलिफ मत है, अलिफ मत, ठीक है। रज़क़नाहुम, इसमें भी जो नून के बाद अलिफ है वो अलिफ मद में है, आ रहा है, हमजा नहीं है। युनफिकून, फिर उसके बाद वल्लदीना, वल्लदीना अल्लदीना हमारा बिफोर गुजर चुका है, ये हमारा जो है हमजा वसली है। युमिनून बिमा उनज़िला, उनज़िला में जो स्टार्ट वाला अलिफ है वो क्या है, असली है, ठीक है, क्योंकि ये दौराने कलाम गिर नहीं रहा, हम इसको प्रोनाउंस करते। फिर उन जिला इलाइका, इलाइका में जो नाम से बिफोर अलिफ हमजा है वो क्या है, असली, ठीक है। फिर वमा उन जिला, उन जिला दोबारा आ रहे हैं, उन जिला में भी जो अलिफ है वो असली है। मिन कबली का वो बिल आखिरती हम यूकिनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, हुमुल मुफ्लिहून में जो अल मुफ्लिहून में लाम से बिफोर अलिफ है वो कौन सा है, वसली, ठीक है जी। आपको इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो असली और वसली का कंसेप्ट है ये क्लियर है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, इराब को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इराब में जैसे हमने जो बात अपनी लास्ट क्लास में खत्म की थी वो यही थी कि इराब को हम जबर जेर पेश नहीं कहते, जैसे कि एक आम कंसेप्ट जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम इराब के अंदर जबर जेर पेश को ही लेके आते हैं, कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं कुरान मजीद तो हमें यही कहा जाता है कि इराब की गलतियां हैं, और इराब फिर क्या फतहा कसरा दम्मा की गलतियां हो रही हैं। तो एक आम कंसेप्ट यही है कि या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हम उर्दू में इराब फतहा कसरा दम्मा के अंदर लेकर आते हैं, लेकिन अरबी का जो इराब है वो फतहा कसरा दम्मा नहीं है बल्कि वो स्टेटस है। फिर इसको अगर हम देखें तो मैं आपको तीन जुमले बताती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिखें ताकि उसको आप कंपेयर कर सकें इसी स्टेटस की तब्दीली के एतबार से। हामिद ने महमूद को मारा, दूसरा जुमला, महमूद ने हामिद को मारा, और तीसरा जुमला, महमूद ने हामिद के भाई को मारा। पहला जुमला हमारे पास था हामिद ने महमूद को मारा, दूसरे जुमले में महमूद ने हामिद को मारा, और तीसरे जुमले में हमारे पास है महमूद ने हामिद के भाई को मारा। अब अगर हम इन तीनों जुमलों में हामिद के स्टेटस को देखें, एक्सक्लूसिवली हामिद के स्टेटस को, तो जो पहला जुमला है उसमें हामिद हमारे पास फाइल है, सब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में महमूद ने हामिद को मारा, अब इस जुमले में हमारे पास हामिद क्या हो गया, मफूल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी उसके ऊपर काम हो रहा है, मार खाने वाला हामिद है दूसरे जुमले में। और तीसरे जुमले में हम अगर देखें तो महमूद ने हामिद के भाई को मारा, अब इस जुमले में ना हामिद मारने वाला है ना मार खाने वाला है, बल्कि उसका एक जिमनी तौर पर हामिद का जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें कि हामिद इस्म सेम है, हम तीनों जुमलों में हामिद का जो नाम है उसको एक ही तरीके के साथ लिख रहे हैं, लेकिन चीज किस चीज में चेंजिंग कर रही है, उसके स्टेटस में, कभी वो फाइल हो रहा है, कभी वो मफूल हो रहा है, कभी उसका जिमनी तौर पर जिक्र आ रहा है। तो ये जो चीज है इसी को आप एराब कहेंगे कि मानी की तब्दीली के बगैर हामिद हामिद हामिद, हम तीनों जुमलों में हामिद को हामिद ही कह रहे हैं, उसके मानी में कोई तब्दीली नहीं हो रही, इस्म की हालत की तब्दीली को हम एराब कहते हैं। यानी माने की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत की तब्दीली को हम एराब कहते हैं। और इसमें अरबी जबान में एक चीज का आप ख्याल रखें, जैसे इंग्लिश में अगर आप तरतीब को चेंज कर दें, अगर आप तरतीब को चेंज कर दें इंग्लिश जबान में, तो उससे क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस आ जाता है। अगर उर्दू में आप तरतीब को चेंज करें तो उससे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तब्दीली को आप कदरे हाल कम कर सकते हैं। अरबी में तरतीब की कोई अहमियत नहीं है। अरबी में असल में जब हम इस्तेमाल करते हैं फाइल को या मफूल को, तो उसकी जो हरकत है वो हमें शो करती है कि ये फाइल है, ये काम करने वाला है, या ये वो शख्स जिसके ऊपर काम हुआ हुआ है। तो अगर हम इसी में अरबी की मिसाल एक ले लें, यही जो 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 जुमले हमने उर्दू में देखे हैं इन्हीं को अगर हम अरबी में ट्रांसलेट करके देखें, वरब हामिदुन महमूदन। पहला जुमला आप लिख लें, वरब हामिदुन महमूदन। फिर दूसरे में आप देखें, वरब महमूदुन हामिदन, वरब महमूदुन हामिदन। पहले सेंटेंस में वरबा फेल हो गया कि उसने मारा हामिदुन, हामिद मारने वाला है, महमूदन जिसको मारा गया है, यानी महमूद इसने मार खाने वाला है। और इसमें असल में जो हमें यानी इंडिकेशन दे रहे हैं कि कौन मारने वाला है और कौन मार खाने वाला है, ये इनकी हरकत है। कि जो हामिदुन में बमा तनवीन है वो हमें बता रही है कि हामिद मारने वाला है, और महमूदन, महमूदन की जो फतह तनवीन है वो हमें बता रही है महमूद मार खाने वाला है। फिर सेकेंड सेंटेंस में हम देखें, वरब महमूदुन हामिदन। अब यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, यानी जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है, एराब की तब्दीली आई है कि महमूदुन जो है वो बमा तनवीन के साथ आ रहा है, मतलब कि जो महमूद है वो मारने वाला हो गया और हामिद मार खाने वाला हो गया, क्योंकि उसके ऊपर फतह तनवीन है। तो इसी में ये भी मिसाल आपको इसीलिए दी गई है कि इस्म के मानी की तब्दीली नहीं हो रही, हामिद नाम हामिद दोनों जुमलों में इस्तेमाल हुआ है, महमूद दोनों जुमलों में इस्तेमाल हुआ है, उनकी मीनिंग में कोई मानी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, सिर्फ उनकी हालत चेंज हो रही है कि एक जुमले में फाइल हो रहे हैं तो दूसरे जुमले में वो मफूल हो रहे हैं। यही चीज एराब कहलाती है कि मानी की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत में जो तब्दीली है वो एराब कहलाती है। इसमें फिर आप एक और मिसाल अगर हम देखें तो हमारे पास आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की मिसाल अगर हम देखें, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसे हम जो कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन। अब कलिमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो मुहम्मदुन यानी दम्मा तन्वीन के साथ आ रहा है। फिर इसके बाद अगर आप अजान में देखें तो जो आपका नाम आता है अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, यहाँ पर मुहम्मदन आता है फतह तनवीन के साथ। फिर जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं उसमें अगर आप देखें तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन, यहाँ पर हम कसरा तनवीन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बोलते हैं। तो आप ये देखें कि ये तीन हालतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है, लेकिन अब देखें मानी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुराद है, लेकिन स्टेटस चेंज हो रहा है कि एक में वो बमा तनवीन के साथ है, एक में फतह तनवीन के साथ है, और एक में कसरा तनवीन के साथ है। अब वो स्टेटस क्यों चेंज हो रहा है, इनकी रीजंस आप जैसे जैसे ग्रामर को आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दम्मा क्यों आती है, कसरा क्यों होती है। कोई ना कोई रीजन जरूर होती है जिसकी वजह से हम दम्मा दे देते हैं, कसरा दे देते हैं, या फतह आ जाती है हुरूफ के ऊपर बगैर वजूहात के। ऐसे ही आप किसी भी लफ्ज को फतह, कसरा या दम्मा नहीं दे सकते। ठीक है, अब मैं आपके सामने दो जुमले बोलूंगी, आपने बहुत ध्यान से दोनों जुमलों को सुनना है और उनकी हरकात को बहुत गौर के साथ सुनना है, क्योंकि ये हरकात ही है जिनसे हमें पता चलता है कि स्टेटस क्या है इस जुमले में किसी भी इस्म का। दरब हामिदुन महमूदन, पहला जुमला है हमारे पास, दोबारा मैं रिपीट करूंगी, बरद हामिदुन महमूदन। अब दूसरा जुमला आप सुन लें, बरब महमूदन हामिदुन, बरब महमूदन हामिदुन। ठीक है, अब इन दोनों जुमलों में मुझे आप बताएं कि पहले जुमले में हामिद का स्टेटस क्या है। वो फाइल है या मफूल है? ओके, फाइल है। ठीक है, फाइल, सही। और दूसरे जुमले में जो कि मैंने बाद में बोला, बरब महमूदन हामिदुन, इसमें हामिद का क्या स्टेटस है? फाइल है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों जुमलों में जो दम्मा तन्वीन है वो हमें बता रही है कि यहां पर हामिद जो है वो फाइल ही के एतबार से आ रहा है। तो अब यहां पे आप देखें कि हमने तरतीब बेशक चेंज कर दी नामों की, लेकिन चूंकि ये जो दम्मा हमारी है ये हमें इंडिकेशन देती है कि फाइल कौन सा है, काम करने वाला कौन सा है, तो इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि तरतीब की चेंजिंग कोई असर नहीं रखती जब उनकी हरकत जो है वो अगर सेम हो जाए तो। ठीक है, फिर इसमें हमें एक चीज दोबारा मैं रिपीट करूंगी कि इस्म की मानी की तब्दीली के बगैर हालत की तब्दीली इराब कहलाती है। और इराब की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे की बात है जिससे हमें पता चल जाता है बहुत आसानी से कि कोई भी जो अल्फाज हैं, यानी अस्मा जो, क्योंकि ये इस्म की अकसाम में आ रहा है, तो इस्म जब हमें उसमें से ढूंढना हो इराब को तो उसमें हम बहुत ही आराम से देख लेते हैं क्योंकि ये हमेशा तनवीन के साथ आता है। यानी आप देखेंगे या तो दम्मा तनवीन होगी या खसरा तनवीन होगी या फिर फतहा तनवीन होगी, तो हमारे पास जब भी तनवीन आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो अस्मा है ये इराब के अंदर आ रहे हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमारे पास 85% जो अरबी के अल्फाज हैं उनके ऊपर अस्मा 85% ऐसे हैं जिनमें हमारे पास तनवीन आती है। और अब हम जो नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि इराब को अगर हम देखें तो उसकी तीन हालतें होती हैं, यानी चौथी कोई हालत नहीं हो सकती इराब में। किसी भी इस्म की तीन हालतें होंगी, हालत रफ होगी, हालत नसब होगी और हालत जर होगी। तीन हालतें होंगी इराब की, इराब के अतबार से इस्म की तीन हालतें होंगी, हालत रफ, हालत नसब और हालत जर। इसमें जैसे अगर हम हामिद का ही नाम ले लें तो हामिदुन हालत रफ के साथ, हामिदन हालत नसब के साथ और हामिदीन हालत जर के साथ। फिर इसी तरह महमूद के नाम को अगर हम ले लें तो हालत रफ में महमूदुन, हालत नसब में महमूदन और हालत जर में महमूदिन। यानी ये तीन इस हालतें हैं, कंडीशंस हैं जिनके अंदर हमें कोई भी इस्म जो इराब के अंदर आएगा, इराब की कैटेगरी में आएगा, उसको हम इन तीन हालतों में से किसी भी एक हालत में फाइंड आउट कर सकते हैं, चौथी कोई उसकी हालत नहीं होगी। इसमें जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी अभी हमने देखा कलिमा में, अजान में और दरूद शरीफ में कि मुहम्मदुन रफ के साथ, मुहम्मदन नसब के साथ और मुहम्मदिन जर के साथ। अब यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास फतहा तनवीन किसी भी इस्म के आखिर में आएगी तो उसके आखिर में हम एक अलिफ ऐड करेंगे। और यही वजह है कि आप लोगों को जैसे तजवीद के कुछ कवायद का बेसिक कुरान मजीद पढ़ने का आइडिया होगा कि उसमें जब भी हमारे पास फतहा तनवीन आती है तो हम उसको एक अलिफ के साथ जो कि उसके आखिर में लिखा हुआ होता है उसके साथ हम उसको पढ़ते हैं। जैसे अगर हम हामिदन को पढ़ें, हामिदन के ऊपर स्टॉप करें तो हामिदा पढ़ेंगे हम उसको, और जो आखिर में उसका अलिफ है एक, उसके साथ हम एक फतहा को पढ़ेंगे। तो ये जो चीज है कि लिखने के अतबार से जब भी फतहा तनवीन होगी आपने उसके बाद एक अलिफ को ऐड करना है, जैसे मुहम्मदन है तो दाल के बाद अलिफ ऐड होगा, महमूदन है तो दाल के बाद एक अलिफ ऐड होगा, हामिदन है तो दाल के बाद एक अलिफ ऐड होगा। जो फतहा तनवीन है वो दाल के ऊपर होगी और एक एक्स्ट्रा अलिफ हम साथ लिखेंगे जो कि फतहा तनवीन की वजह से आ रहा होगा। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया कि एराब के अतबार से इस्म की तीन हालतें हैं कि या तो वो दमा तनवीन के साथ होगा, या वो फतहा तनवीन के साथ होगा, या वो कसरा तनवीन के साथ होगा, तो इस ग्रुप इस इस्म के ग्रुप का नाम लिख लें आप, इसको हम बोलते हैं मुनसरिफ, यानी टर्मिनोलॉजिकली हम इसको बोलते हैं मुनसरिफ। मीम नून सौद रा फा, मैं एक मिनट इसको लिखती हूँ मुन। मुनसरिफ नाम है उन अस्मा का जिनको हम इन तीनों हालतों में तनवीन के साथ प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, इस चीज को क्योंकि आगे हम और अस्मा को भी देखेंगे, कुछ और कैटेगरीज भी हैं जो एराब के अंदर आ रही हैं, यानी एराब तो एक टॉपिक है ना, उस एराब के अंदर आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। जैसे हमने वसत के अतबार से देखा तो इस्म मारिफा है, डेफिनेशन मुनसरिफ की आपको मतलब उस तरह से डेफिनेशन इन अस्मा को डेफिनेशन इसकी कोई इस तरह से डेफिनेशन नहीं है, बल्कि आप इसको जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो अस्मा तीनों हालतें कबूल करते हैं वो मुनसरिफ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि मुनसरिफ की आपको एक पहचान बिल्कुल क्लियर होगी कि आप उस इस्म को मुनसरिफ कहेंगे जो कि तनवीन के साथ आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हामिदू है यानी जो एक कसरा के एक दमा के साथ या एक फतहा के साथ या एक कसरा के साथ आए उसको आप मुनसरिफ के अंदर नहीं लेके आएंगे। मुनसरिफ के ऊपर हमेशा तनवीन होती है, ये इसकी एक अलामत है जिससे मुनसरिफ हमें बहुत आराम से पता चल जाता है कि किसी भी लफ्ज के ऊपर जब तनवीन होगी तो हम उसको आराम से मुनसरिफ के अंदर ले आएंगे। जिसके ऊपर अकेली अकेली हरकत है वो मुनसरिफ के अंदर शामिल नहीं होगा। हाँ जी, हमेशा जो भी मुनसरिफ जो भी तनवीन के साथ इस्म आएगा उसको हम मुनसरिफ के अंदर ले आएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक रूल बताया है इसी मुनसरिफ के कायदे में कि जब आपके पास फतहा तनवीन होगी तो फतहा तनवीन के बाद आप अलिफ ऐड करेंगे उस इस्म के आखिर में जो कि फतहा तनवीन की वजह से होगा। इसकी हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं, उन दो एक्सेप्शंस को अब आप लिखें कि पहली एक्सेप्शन हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास राउंड ता किसी भी इस्म के आखिर में आएगी तो हम उसके आगे अलिफ नहीं ऐड करेंगे, यानी फतहा तनवीन में उस लफ्ज के आगे हम अलिफ को ऐड नहीं करेंगे। जिसमें जैसे आप देख लें जन्ना, जन्नतुन, जन्नतन और जन्नतिन, जन्नतन में आपके पास अलिफ ऐड नहीं हो रहा। ये जो चीजें हैं इनको अगर आप कुरान मजीद में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएंगी। जिसको कुछ एम्बिग्विटी है वो अपने कॉपी में साइड पे लिख ले कि वो क्लास के बाद इसको जब कुरान मजीद में देखे कि फतहा तनवीन एंड में आ रही है, अस्मा फतहा तनवीन हमेशा अस्मा ही के एंड में आती है। जब भी आप फतहा तनवीन को देखेंगी तो आपको अस्मा के आखिर में एक एक्स्ट्रा अलिफ मिलेगा, सिवाय इन दो कैटेगरीज के जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि पहली कैटेगरी वो है जिसमें राउंड ता आ रहा है। तो आप जब कुरान मजीद में ऐसे अल्फाज को ढूंढेंगे जिनके ऊपर राउंड ता है और राउंड ता के ऊपर फतहा तनवीन है उसके आगे आपको अलिफ नहीं लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे इसकी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दी जन्नतुन, जन्नतन और जन्नतिन, फिर दूसरी एग्जाम्पल में इमरातुन, इमरातन। अब यहां पर इमरातन जब आप करेंगे तो राउंड ता के बाद आपने अलिफ को ऐड नहीं करना, और इमरातिन। फिर इसकी एक और एग्जाम्पल आप देखें आयतुन, आयतन और आयतिन। तो यहाँ पर भी आयतन में आप जो फतहा तनवीन है उसके बाद अलिफ को नहीं लिखेंगे। जी सलातुन, जकातुन, यहाँ पे भी सलातन और जकातन जब आप फतहा तनवीन के साथ उनको लिखेंगे तो राउंड ता के बाद आपने अलिफ ऐड नहीं करना। ये हमारे पास पहली एक्सेप्शन है जो हम किस चीज की एक्सेप्शन देखते हैं कि फतहा तनवीन के बाद हमारे पास अलिफ ऐड नहीं होगा राइटिंग में। इसी में अब आपके पास दूसरी जो एक्सेप्शन आएगी, पहली एक्सेप्शन राउंड ता है, सेकंड एक्सेप्शन है जब भी अलिफ के बाद आपको हमजा मिलेगा, अलिफ के बाद हमजा फतहा तनवीन के साथ मिलेगा तो उसके आगे आपने अलिफ को ऐड नहीं करना राइटिंग में। जैसे इसकी एग्जाम्पल समा उन, समा उन में सीन मीम हमजा और हमजा के ऊपर बमा तनवीन, एक मिनट, समाउन, समाउन जैसे है, इसमें अगर हमजा के ऊपर दमा तनवीन होगी तो हम इसके आगे अगर समा अन हम बोलेंगे यानी हमजा के ऊपर दमा तनवीन लिख देंगे तो हम उसके आगे अलिफ ऐड नहीं करेंगे। दूसरी एक्सेप्शन हमारे पास ये है कि जब भी अलिफ के बाद आपको हमजा किसी भी इसम के आखिर में मिलेगा तनवीन के साथ तो आपने उसमें अलिफ ऐड नहीं करना फतहा तनवीन की सूरत में। जो लफ्ज अभी मैंने लिखा है लास्ट में समा अन, अगर वो आपको फतहा तनवीन के साथ मिलेगा हमजा जो एंड में हमजा आ रहा है वो अगर आपको फतहा तनवीन के साथ मिलेगा तो उसके बाद आप राइटिंग में अलिफ को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली एक्सेप्शन क्या है राउंड का और दूसरी एक्सेप्शन है इसम के आखिर में जब आपको अलिफ के साथ हमजा मिलेगा। अब यहाँ पे भी सीन मीम अलिफ और हमजा है यानी अगर हम इसका जो लास्ट पोर्शन है इस इसम का देखें अलिफ और हमजा, अलिफ और हमजा में ये इंडिकेशन है कि अगर आपको किसी इसम के आखिर में अलिफ और हमजा मिल रहा है और हमजा के ऊपर फतहा तनवीन है तो आपने उसके बाद अलिफ ऐड नहीं करना राइटिंग में। ये असल में बात आपके पढ़ने से रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये पढ़ने पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन ये एक राइटिंग की चीज है कि जब आप लिख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस फतहा तनवीन के आखिर में अलिफ को ऐड करना है और किस फतहा तनवीन के आखिर में अलिफ को ऐड नहीं करना। दो एक्सेप्शन है जिनमें हमने ऐड नहीं करना राउंड था और जब इसम के आखिर में हमें अलिफ और हमजा मिले। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो वो सवाल कर ले। ठीक है, अब तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमारे पास एराब की एराब के अतबार से जो इसम की हालतें हैं वो तीन थी, हालत रफ, हालत नसब, हालत जर। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, अब आपको आवाज आ रही है? ओके अलहमदुलिल्लाह। ठीक है, इसमें जैसे हमने मुनसरिफ को पढ़ा तो मुनसरिफ में हमने ये देखा था कि मुनसरिफ असमा के ऊपर हमेशा तनवीन आती है और मुनसरिफ असमा आपको तीन हालतों में मिलते हैं, दमा तनवीन, फतहा तनवीन और कसरा तनवीन के साथ। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ असमा हमारे पास, ये जो मुनसरिफ असमा है ये ज्यादातर की कैटेगरी में आते हैं, तकरीबन 85% असमा ऐसे हैं जो मुनसरिफ की कैटेगरी में होते हैं। अब आप कुछ ऐसे असमा हैं जो हमें एक हरकत के साथ मिलते हैं यानी उनके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, एक हरकत के साथ मिलेंगे। ये असमा जो है ये 13% है यानी जैसे हमने पीछे देखा कि 85% अस्मा ऐसे हैं जिनके ऊपर तनवीन आती है और वो तीन हालतों में होते हैं। अब जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं वो 13% है, 13% है, और वो तीन हालतों में नहीं होते बल्कि दो हालतों में होते हैं। यानी आपको या वो हालत रफ में मिलेंगे या वो हालत नसब में मिलेंगे, और अगर वो हालत जर में है भी तो भी वो फतह के साथ ही होंगे। इसमें मैं आपको एक मिसाल देती थी जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इब्राहिमु है, तो इब्राहिमु में आपको हालत रफ में इब्राहिमु मिलेंगे, हालत नसब में इब्राहिमा होंगे, और हालत जर में इब्राहिमा होंगे। यानी आप अगर कुरान मजीद में या कहीं पर भी देखेंगे, इब्राहिम का वर्ड अगर हालत जर में आ रहा है, यानी फर्ज करें कि कोई भी जुमले की मुनासिबत से ऐसी कंडीशन बन रही है कि इब्राहिम हालत जर में है, तो भी उनके ऊपर इब्राहिमी नहीं होगा बल्कि इब्राहिमा होगा। जी एग्जैक्टली, ये तनवीन और कसरा कबूल नहीं करते, ये जो अस्मा है 13% अस्मा, और इनको हम क्या कहते हैं, ये पहली वाली कैटेगरी के उल्ट है, इनको हम गैर मुनसरिफ अस्मा कहते हैं। पहली वाली जो कैटेगरी हमने तनवीन वाली पढ़ी थी और तीन हालतें थी उसकी, वो मुनसरिफ अस्मा थे, वो ज्यादा परसेंटेज है उनकी। और ये जो सेकेंड कैटेगरी है ये हमारे पास गैर मुनसरिफ अस्मा की होती है, इनके ऊपर तनवीन नहीं आती और ये हमें दो हालतों में मिलते हैं, इनकी तीन हालतें नहीं होती, ये दो हालतों में होते हैं। हालत रफ में आपको इब्राहिम इब्राहिमु मिलेंगे, हालत नसब में इब्राहिमा, और हालत जर में इब्राहिमा, यानी फतहा के साथ। हालत जर में जैसे हमें पता है कि जर देर को बोलते हैं, लेकिन हमें उसके बावजूद इब्राहिमा ही मिलेंगे क्योंकि ये दो हालतों में पाए जाते हैं, दम्मा और फतहा की हालत में, कसरा इनके ऊपर नहीं आती। ओके, मैं इसकी थोड़ी कैटेगरीज आगे बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं आखिर में आपसे पूछूंगी कि समझ आई या नहीं, तो फिर अगर इंशाल्लाह कोई मसला हुआ तो दोबारा उसको रिपीट करेंगे। ये जो अस्मा है, जैसे हमें पता है कि जो मुनसरिफ है उनको जज करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि अस्मा में जिनके ऊपर भी तनवीन होगी, और असल में होती ही तनवीन अस्मा के ऊपर है, तो जो भी आपको मिलेंगे तनवीन के साथ कुरान मजीद में अल्फाज कलिमात, आप बहुत इजीली उनको मुनसरिफ की कैटेगरी में लाके उनकी हालत भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये फतहा है या कसरा है या दम्मा है, हालत रफ है, नसब है या जर है। अब हम जैसे अगर मुनसरिफ अस्मा को, गैर मुनसरिफ अस्मा को देखें, जिसमें हमने देखा कि वो तनवीन और कसरा कबूल नहीं करते, तो इनमें हमें कुछ कैटेगरीज मिलती हैं, यानी कुछ पॉइंट्स आप लिख लें कि जिस जो कुछ अस्मा ऐसे हैं जो उन कैटेगरीज में होंगे तो वो गैर मुनसरिफ होंगे। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है अंबिया के नामों की, यानी अक्सर अंबिया के नाम ऐसे हैं जो कि गैर मुनसरिफ होते हैं। गैर मुनसरिफ का क्या मतलब है कि वो ना तो कसरा कबूल करते और ना ही तनवीन। इसमें जैसे एक एग्जांपल तो हजरत इब्राहिम के नाम की है कि इब्राहिमा इब्राहिमु, ये दो कंडीशंस में आते हैं, अगर ये हालत जर में होंगे भी तो भी ये इब्राहिमा ही आएंगे, यानी आखिर में फतहा ही होगी। इसी तरह हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम इस्माईलु और इस्माईला, अगर हजरत इस्माईल का नाम हालत जर में होगा तब भी ये इस्माईला ही होगा, ये कसरा के साथ नहीं आएगा। इसी तरह दाऊदु दाऊदा और दाऊदा, हालत जर में भी दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम दाऊदा ही होगा, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम यूनुसु यूनुसा, और हालत जर में भी यूनुसा ही लिखा जाएगा। फिर यूसुफु, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम यूसुफा, और हालत जर में भी ये यूसुफा ही लिखा जाएगा। इसमें जैसे अंबिया के जो अक्सर नाम है वो इस कैटेगरी में आते हैं, और एक एक्सेप्शन जिसको हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं मुनसरिफ के अंदर, मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, कि वो तीनों हालतों में हमें मिलते हैं, फतहा तनवीन के साथ भी, दम्मा तनवीन के साथ भी, कसरा तनवीन के साथ भी। यानी वो मुनसरिफ अस्मा में आ रहे हैं और वो जर भी कबूल करते हैं और तनवीन भी कबूल करते हैं। और इसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये भी मुनसरिफ असमा में आते हैं, ये मुनसरिफ असमा में नहीं आ रहे। तो जैसे जो मैंने पहले अम्बिया के नाम बताए थे, इब्राहिम, इस्माइल, दाऊद, यूनुस, यूसुफ, अयूब, ये जो अम्बिया के नाम हैं ये आपको तनवीन के बगैर मिलेंगे और जर को कबूल नहीं करेंगे। जर की हालत में भी ये फतहा ही के साथ आपको मिलेंगे। पहली कैटेगरी अम्बिया अलैहिस्सलाम के अक्सर नामों की है। दूसरी कैटेगरी को हम अगर देखें तो वो अरबी के जो मुअन्नस अस्मा हैं, यानी अरबी अस्मा में जो औरतों के लिए अस्मा इस्तेमाल होते हैं, जैसे हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम का नाम है रबी अल्लाह अन्हा आयशा तू, मुनसरिफ नहीं गैर मुनसरिफ, क्योंकि मुनसरिफ को हम देख चुके हैं वो तनवीन के साथ आते हैं, जो गैर मुनसरिफ है वो तनवीन कबूल नहीं करते। और इसमें आप लिखें अक्सर अम्बिया के नाम, अक्सर अम्बिया के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, जो कि ना तो तनवीन कबूल करते हैं और ना ही कसरा कबूल करते हैं। फिर इसमें जैसे अगर हम सेकेंड कैटेगरी जैसे मैं आपको डिफाइन करी थी, तो अरबी जबान में जो औरतों के नाम है मुअन्नस अस्मा एलाम है वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड नंबर पे आयशा तू, ये तनवीन कबूल नहीं करता नाम और ना ही जर कबूल करता है। इसी तरीके से फातिमा तू, हफ्सा तू, ज़ैनबू, खदीजा तू, ये तमाम नाम ना तो कसरा को कबूल करते हैं और ना ही तनवीन को। आयशा तू, फातिमा तू, हफ्सा तू, ज़ैनबू, खदीजा तू। फिर इसमें आप थर्ड कैटेगरी देख लें, मर्दों के नाम जो कि गोल ता के ऊपर एंड हो रहे हैं, जैसे उसामतू, उसामता, और हालत जर में भी ये उसामता ही रहेंगे। फिर तलहतू, तलहता, और हालत जर में भी ये तलहता ही होंगे। हुज़ैफतू, हुज़ैफता, और हालत जर में भी ये हुज़ैफता ही होंगे। और फिर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम हमज़तू, हमज़ता, और हमज़ता, ये भी गोलता के ऊपर एंड हो रहे हैं, मर्दों के नामों में से हैं, ये ना तो जर कबूल करते और ना ही तनवीन, हालत जर में भी ये आपको फतहा ही के साथ मिलेंगे। और फिर फोर्थ कैटेगरी में मर्दों के वो नाम जो कि अलिफ नून के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं, उस्मान, हज़रत उस्मान का जो नाम है रज़ी अल्लाहु अन्हु, इसमें ये आपको कसरा के साथ नहीं मिलेगा, उस्मानु और उस्माना, उस्मानी नहीं मिलेगा आपको, अलिफ नून के साथ ये एंड हो रहा है। इसी तरीके से अदनान, अदनानु, अदनाना, और कसरा की हालत में भी आपको अदनाना ही मिलेगा। फिर इसी तरीके से जो फरिश्तों के नाम हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास ये पॉइंट है कि जो फरिश्तों के नाम हैं वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं, यानी वो ना तो कसरा कबूल करते हैं हालत जर में और ना ही वो तनवीन के साथ आते हैं, जैसे जिब्रीलू, जिब्रीला, और हालत जर में भी जिब्रीला ही रहते हैं। फिर मीकालू, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का नाम मीकाला, और हालत जर में भी मीकाला ही होते हैं। फिर इसराफीलू, इसराफीला, और हालत जर में भी इसराफीला ही होते हैं। फिर दो फरिश्तों के नाम जो कि हमारे पास सूरतुल बकरा में आते हैं, हारूतू और मारूतू, ये हालत जर में फतहा के साथ ही मिलते हैं, हारूता और मारूता, अगर ये हालत जर में आएंगे तो भी ये फतहा के साथ ही होंगे। ठीक, इसके बाद आप देखें शहरों के नाम, शहरों के नामों में मक्का तू, जो कि हालत जर में होगा तो भी आपको फतहा के साथ ही मिलेगा, मक्का था, ये जर कबूल नहीं करता और ना ही तनवीन इसके ऊपर आती है। और इसी तरीके से पाकिस्तान, पाकिस्तानु, पाकिस्ताना, हालत जर में भी पाकिस्ताना ही रहेगा क्योंकि ये मुल्कों और शहरों के नामों में आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम इराक को देख लें तो इराकू, इराका और हालत जर में भी इराका ही रहेगा। ये हमारे पास छह कैटेगरीज हो गई। फिर इसके बाद जो सातवीं कैटेगरी है उसमें हमारे पास कुछ ऐसे नाम है जो मुतफरक अस्मा है। इसमें जैसे इबलीस का नाम है वो कसरा के साथ नहीं आता, या हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है वो कसरा के साथ नहीं आता। हालत जर में भी ये आपको फतहा के साथ ही मिलेंगे। हालत जर में अगर इबलीस का नाम आएगा तो इबलीस सा ही होगा और उमरा ही होगा। और इसी तरीके से फिरौन, फिरौन का नाम भी जो है वो कसरा के साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। और इसमें फिर हमारे ये अब पॉइंट आपको समझ आ गया, जो हमने गैर मुनसरिफ का जो हमने टॉपिक पढ़ा है कि वो हालत जर में भी कसरा के साथ नहीं आते बल्कि फतहा के साथ ही आते, उस पर तनवीन नहीं होती। इन अस्मा की जो तादाद है वो तकरीबन 13% है और इनको हम गैर मुनसरिफ के नाम से पहचानते हैं। और इसकी हमने कोई 7 कैटेगरीज पढ़ ली और इन 7 कैटेगरीज में आपको एक चीज कॉमन मिली होगी, जो नाम है वो ज्यादातर हमें गैर मुनसरिफ मिल रहे हैं, ना तो वो कसरा के साथ आते हैं और ना ही वो तनवीन के साथ आते हैं। ये जो मुतफरक नेम्स हैं इसमें दो तीन एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, जैसे इबलीस का नाम है, हजरत उमर अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम है और फिरौन का नाम है। ये तीन नाम हैं जो कि कसरा के साथ नहीं आते, ठीक है। यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई हो तो हम फिर इसका लास्ट पॉइंट देखें, एराब का। ठीक है, कि जैसे हमने इराब में देखा था कि जो हमारे पास पहली कैटेगरी है वो मुनसरिफ अस्मा की है, फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो गैर मुनसरिफ अस्मा की थी। और अब हमारे पास कुछ ऐसे अस्मा हैं, पहली वाली कंडीशन में हमने मुनसरिफ अस्मा में क्या देखा था कि वो तीनों हालतों के साथ आते हैं, जो गैर मुनसरिफ है वो दो हालतों के साथ आते हैं। अब हमारे पास तीसरी कैटेगरी है जो सिर्फ एक ही हालत में होती है, या तो वो रफ की हालत में होगी तब भी वो एक ही नाम है जो रफ में, जर में और नसब में इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही कम परसेंटेज है इनकी, 2% है, 2% अस्मा ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हाजा जो कि इस्म इशारा है, हाजा ये हालत रफ में होगा तब भी हाजा होगा, हालत नसब में होगा तब भी हाजा होगा, हालत जर में होगा तब भी हाजा होगा। यानी ये तीनों हालतों में इसकी एक ही तरीके के साथ हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। फिर हमारे पास जो आज की एग्जांपल्स में भी, हमारे पास आज के लेसन में भी एक वर्ड आया था, दालिका, दालिका, ये भी हालत रफ, हालत नसब और हालत जर में दालिका ही रहेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है अल्लज़ी, ये भी हमारे पास हालत नसब, हालत जर, हालत रफ में अल्लज़ी ही रहेगा। अब इसमें अगर आपको कोई चीज थोड़ी सी टफ लग रही हो तो उसको अपने माइंड पे बिल्कुल हावी ना होने दें, क्योंकि ये सब वो चीजें हैं जो हम इंग्लिश में पढ़ते आए हैं। जैसे अगर आप फॉर्म्स को देखें तो जब शुरू में हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमें फॉर्म्स पढ़ाई जाती हैं, जिसमें कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनकी डिफरेंट शक्लें बन जाती हैं। फिर बाज दफा क्या होता है, जैसे अगर आप हेल्प की एग्जाम्पल लें तो हेल्प, 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 यानी हेल्प की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपको मिलेगी H-E-L-P, फिर सेकेंड फॉर्म आपको ED के इजाफे के साथ मिलेगी हेल्प, और तीसरी भी आपको हेल्प ही मिलेगी। तो यानी आप अगर हमने जो गैर मुनसरिफ अस्मा देखें उसमें हमारे पास हालत नस्ब और हालत जर बिल्कुल सेम एक ही उसमें आ रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं, हम थोड़ा बोलना सीखते हैं, थोड़ा और ग्रामर के रूल्स वगैरह, जो इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रही हूँ, कि अगर हम उनके रूल्स सीखते हैं तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर हेल्प आ रहा है, तो अब ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, उसको हम रिकग्नाइज करना आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। हर चीज़ हम एक स्टेप पे नहीं सीख लेते। तो अभी हो सकता है आपको ये चीज़ें कंफ्यूज कर रही हूँ कि अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम अगर फतह के साथ आ रहा है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये नसब है कि ये जर है। तो वो चीज़ दूसरे नंबर की बात है। अभी आपने सिर्फ इस चीज़ को समझना है कि जो गैर मुनसरफ असमा है वो हमारे पास दो हालतों में आते हैं, दम्मा की सूरत में और फतह की सूरत में। अगर वो जर में भी आ रहे हैं तो भी वो फतह में आएंगे। जो उसकी रिकग्निशन है वो इंशाल्लाह बाद में जब हम और चीज़ें पढ़ेंगे, ग्रामर की बाकी सारे रूल्स को पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो सब चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। और इसी तरीके के साथ हमारे पास इंग्लिश ही की जबान में एक एग्जाम्पल है, रीड। ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हमें रीड ही मिलती है, रीड रेड रेड। प्रोनंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो सेम रहते हैं। और इसमें भी फिर अगर हमें तीनों फॉर्म्स के डिफरेंस के साथ हमें तीन जुमले मिले रीड के, तो हम उसको पहचान लेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, यहाँ यहाँ या यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। तो इसी तरीके के साथ ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ पता चलेंगी कि ये अब जब जुमले में इस्तेमाल हो रहा है तो ये हालत रफ है या नसब है या जर है। तो अभी आप उनकी पहचान के यानी उसमें किस्से में ना पड़े, अभी आपको सिर्फ जज करना आना चाहिए कि मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ कौन से अस्मा है, फिर मबनी किस कैटेगरी में कौन से आ रहे हैं। तो सिर्फ इन अल्फाज के ऊपर ध्यान दें, जो एक जुमले की तरकीब और उस जुमले को समझने की चीज़ें हैं, वो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी तो वो सब चीज़ें भी इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर हमारा इराक का टॉपिक खत्म हो गया है। हम लोगों ने इसके मुतालिक जितनी सारी चीज़ें थी वो सब पढ़ ली हैं। अब अगर किसी को कोई भी इसके बारे में चीज़ समझनी हो, कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, तो वो सवाल कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो इंशाल्लाह फिर अभी हमारे पास टाइम नहीं रहा, उसकी एप्लीकेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दे दूं ताकि हम नेक्स्ट क्लास के शुरू में इसको देख लें। सूरतुल बकरा की आप लोग सिक्स आया से लेकर 17th आया तक आप लोग सिर्फ मुनसरिफ असमा, क्योंकि मुनसरिफ असमा बहुत आसान है उनको जज करना। जो भी आपको लफ्ज, अब मैं ये नहीं कह रही कि इस्म, क्योंकि ये भी पहचान करना कि क्या कौन सा लफ्ज इस्म में आ रहा है, कौन सा फेल की कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा हर्फ की कैटेगरी में आ रहा है, थोड़ा सा अभी ट्रिकी है। हम अभी बहुत ही बिगिनिंग स्टेप में हैं। तो यहाँ पर आपने सिर्फ जज ये करना है 6 से लेकर 17 आयात के दरमियान में कि जो भी लफ्ज आपके पास तनवीन के साथ आ रहा है उसको आपने लिख लेना है अलग से, और उसकी हालत के साथ। या आप तीन कैटेगरीज बना सकती हैं, हालत रफ की एक कैटेगरी बना सकते हैं, हालत नसब की एक कैटेगरी बना सकते हैं, और हालत जर की एक कैटेगरी बना सकते हैं, और उसमें अल्फाज को आप लिख सकते हैं कि जो भी दम्मा तनवीन के साथ आ रहा है उसको आप एक लाइन में लिखें, फिर जो भी फतह तनवीन के साथ आ रहा है उसको आप एक लाइन में लिखें, और जो भी कसरा तनवीन के साथ आ रहा है उसको आप एक लाइन में लिखें। तो इस तरीके से आप लोगों ने 6th आया से लेकर 17th आया तक इन सबको लिखना है, ठीक है? सॉरी, ये मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रही, ये हुस्ना कुबरा और सुगरा। ओके ओके, हाँ जी एग्जैक्टली। क्योंकि ये तीनों हालतों में आपके पास, ये असल में ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया, मैंने राइट किया हुआ था लेकिन ये मिस हो गया। एग्जैक्टली ये जो है ये हुस्ना खुबरा और ये जो सुगरा है, या मूसा ईसा यहया, ये जो नेम्स हैं ये आपके पास मबनी असमा में आएंगे, जो कि हमारे पास दो पर्सन थे हैं, जो तीनों हालतों में आपके पास एक ही उनका नाम रहता है, वो चेंज नहीं होते। तो ये ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह जब हम मुअन्नस का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें इन सब तीनों ये जो मूसा, ईसा, यहया इस तरह की एंडिंग के साथ हैं, ये आपको ज्यादा रिकग्निशन इनकी आसान हो जाएगी। और ये आपके पास थर्ड कैटेगरी में आते हैं, 2% जो हमने लास्ट में पढ़ी है मबनी अस्मा की, उसमें आते हैं। ठीक है, तो हमने आज हमने ये पढ़ा है कि एराब को, एराब में हमने सबसे पहले क्या चीज पढ़ी, मुनसरिफ अस्मा पढ़े जो कि तीन हालतों में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो सेकंड कैटेगरी पढ़ी वो गैर मुनसरिफ अस्मा की थी, जो कि सिर्फ दो हालतों में हमारे पास आते हैं, वो हालतें जर को कबूल नहीं करते। फिर हमने जो तीसरी कैटेगरी की देखी वो क्या थी, मबनी अस्मा थे जो कि तीनों हालतों में एक ही उनका एक ही तरीके के साथ हम उनको बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एंड करते हैं अपनी क्लास का इंशाल्लाह। हाँ जी, जो मबनी अस्मा है वो 2% है तकरीबन। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته